آگے دیکھیے سبق بھائی، متن دیکھیے. فصل الشرطی من الاقترانی اما ان یترکب من متصلتین او منفصلتین او حملیت و متصلت او حملیت و منفصلت او متصلت و منفصلت وینعقد فیہ الاشکال الاربعۃ وفی تفصیلها طول. اچھا بھائی، گزشتہ سبق کے اندر وہ ضابطہ ذکر ہو رہا تھا، مصنف نے آپ کو بتلایا تھا ایک مختصر ضابطہ، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ جو بھی قیاس بنائیں گے وہ منتج ہوگا بھائی. اور وہ ضابطہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے، یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے. اگر اوسط کی موضوعیت عام ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کے ساتھ ہونی چاہیے، یا تو صغرا جو ہے وہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے، یا اوسط کا حمل اکبر پر ایجابن ہونا چاہیے. اور اگر دوسرا امر ہے یعنی اکبر کی موضوعیت عام ہے تو اس کے ساتھ دونوں مقدمتین ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر شکل ثانی ہے تو وہاں پر دو نسبتوں کے درمیان منافات بھی ہونی چاہیے جہت کے اعتبار سے. یعنی اگر صغرا کے اندر جو حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذات اصغر کی طرف، ایک وہ نسبت ہے، اور دوسری جو کبرا کے اندر حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصف اکبر کی طرف، ان دو نسبتوں میں منافات ہونی چاہیے. آج کے سبق پر آئیے بھائی. فصل الشرطی من الاقترانی اما ان یترکب من متصلتین او منفصلتین او حملیت و متصلت او حملیت و منفصلت او متصلت و منفصلت. اب قیاس شرطی اقترانی کا ذکر کرنے لگے ہیں بھائی مصنف. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس جو ہے وہ قول ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے اور ان کے ساتھ ایک اور قول یعنی نتیجہ بھی لازم ہو. اگر اس قول کو آپ مانتے ہیں یعنی ان دو قضیوں کو، ان دو مقدموں کو آپ تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اور مقدمہ یعنی نتیجہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور پھر یہ جو قیاس ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک قیاس استثنائی ہے اور ایک قیاس اقترانی ہے. قیاس استثنائی وہ تھا جس کے اندر نتیجہ یا نقیض نتیجہ جو ہے وہ مذکور ہوتی ہے، قیاس کے اندر ہی نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور ہوتی ہے، جس کو انہوں نے تعبیر کیا تھا کہ قیاس استثنائی وہ ہے جس میں وہ جو نتیجہ ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ مذکور ہوتا ہے. قیاس کے اندر ہی نتیجہ جو ہے اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ مذکور ہوتا ہے، یعنی اس نتیجے کا مادہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہی محکوم علیہ اور محکوم بھی جو نتیجے میں ہیں وہی اسی طرح قیاس کے اندر بھی مذکور ہوتے ہیں، اور صورت بھی وہی ہوتی ہے جو وہاں محکوم علیہ ہے، یہاں محکوم علیہ ہوتا ہے، جو وہاں محکوم بھی ہے وہ یہاں قیاس میں بھی محکوم بھی ہوتا ہے. اور اس کی نشانی میں نے بتلائی تھی کہ اس کے اندر عموماً جو ہے لاکنہ کا لفظ آئے گا، یعنی حرف استثناء آئے گا، لاکنہ آئے گا یا الا آ جائے گا، جو بھی استثناء والے لفظ ہیں، اور اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرف استثناء مذکور ہوتا ہے. جبکہ دوسرا قیاس جو ہے وہ قیاس اقترانی ہے، اس کے اندر حرف استثناء مذکور نہیں ہوتا بلکہ حرف اقتران یعنی وہ مذکور ہوتا ہے، وہ مذکور ہوتا ہے. اور یہ قیاس اقترانی پھر دو قسم پر ہے، یا یہ حملی ہوگا یا شرطی ہوگا. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے قیاس اقترانی حملی وہ ہے جو دو قضیہ حملیہ سے مرکب ہو. جو کس سے مرکب ہو؟ وہ قیاس اقترانی جو دو قضیہ حملیہ سے مرکب ہو اس کو قیاس اقترانی حملی کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہے شرطی بھائی. اور قیاس اقترانی شرطی، یا تو اس میں دونوں قضیے، دونوں مقدمے شرطیہ ہوں گے، یا دونوں میں سے ایک شرطیہ ہوگا اور دوسرا حملیہ ہوگا. بھئی یہاں قضیہ حملیہ اور شرطیہ کا ذکر آیا تو تفصیل یاد رکھیے. इन्होंने आपको बतलाया था कि कजिया उस कौल का नाम है, उस मुरक्कब का नाम है जो सिदक और किजब का एहतमाल रखता हो, उसमें सिदक का भी एहतमाल हो और किजब का भी एहतमाल हो, और फिर इस कजिए के अंदर अगर एक चीज का सबूत हो दूसरी चीज के लिए या एक चीज की नफी हो दूसरी चीज से तो इसको कजिया हमलिया कहते हैं। यह मुजीबा भी हो सकता है और सालिबा भी हो सकता है। और ये जो कजिया हमलिया है इसमें एक चीज का सबूत होता है दूसरी चीज के लिए या एक चीज की नफी होती है, तो इसके अंदर जो महकूमुन अलै होता है यानी इसका पहला जुज जो होता है उसको मौजूअ कहते हैं, और जो इसका दूसरा जुज होता है यानी महकूमुन बिही उसको महमूल कहते हैं। तो कजिया हमलिया के दो जुज हो गए, एक मौजूअ और एक महमूल, और इसके अलावा जो चीज रबत पर दलालत करे उसको क्या कहते हैं, राबिता कहते हैं। और अगर ऐसा न हो यानी कजिए के अंदर एक चीज का सबूत या नफी दूसरी चीज से न हो तो उसका नाम कजिया शर्तिया है भाई। और मैंने बताया था कजिया शर्तिया वो है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल को जिक्र किया जाए, दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल को जिक्र किया जाए। अगर इत्तेसाल को जिक्र किया जा रहा है तो वो शर्तिया मुत्तसिला है, और अगर इन्फिसाल को जिक्र किया जा रहा है तो वो शर्तिया मुनफसिला है। फिर जहां इत्तेसाल को जिक्र किया जा रहा है वहां कहीं इत्तेसाल का सबूत होगा और कभी इत्तेसाल की नफी होगी, तो वो अगर इत्तेसाल का सबूत है तो वो शर्तिया मुत्तसिला मुजिबा होगा, और अगर उसमें इत्तेसाल की नफी जिक्र की जाए तो वो शर्तिया मुत्तसिला सालिबा होगा। और इसी तरह इन्फिसाल है, अगर इन्फिसाल होने का जिक्र हो तो वो मुनफसिला मुजीबा है, और अगर इन्फिसाल न होने का जिक्र हो तो वो मुनफसिला सालिबा है। तो कजिया शर्तिया जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या इन्फिसाल को बयान किया जाए, फिर इत्तेसाल को अगर जिक्र किया जा रहा है तो उसमें यह बयान किया जाएगा कि इत्तेसाल है या इत्तेसाल नहीं है, अगर इत्तेसाल है तो वह हुआ मुजीबा मुत्तसिला मुजीबा, और अगर यह बयान किया जाए कि इत्तेसाल नहीं है तो वह हुआ मुत्तसिला सालिबा, और अगर मुनफसिला है तो उसमें अगर इन्फिसाल हो ना जिक्र हो तो उसको क्या कहेंगे, मुनफसिला मुजिबा, और अगर यह जिक्र हो कि इन्फिसाल इन दो निस्बतों में नहीं है तो वो मुनफसिला सालिबा है। और मैंने बतलाया था, निशानी भी बतलाई थी कि जो मुनफसिला है इसमें इम्मा और औ जो इन्फिसाल के लिए आते हैं ये हुरूफ इस्तेमाल होंगे, हादल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन, ये शर्तिया मुनफसिला है। और अगर अदाते शर्त इस्तेमाल हो उस कजिए के अंदर जैसे इन है, ईजा है, कुल्लमा है वगैरह, तो फिर वो शर्तिया मुत्तसिला है, जैसे इन का नति शमसु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, तवज्जो है। तो कजिया शर्तिया मुत्तसिला में अदाते शर्त इस्तेमाल होंगी जिसको आप जुमला शर्तिया कहते हैं, और जबकि शर्तिया मुनफसिला के अंदर इम्मा और औ जिक्र होंगे और उसमें दो निस्बतों के दरमियान इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल को बयान किया जाएगा। तो हासिल तारीफ क्या हुआ, कजिया शर्तिया मुत्तसिला वो है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या आदम इत्तेसाल को बयान किया जाए, अगर इत्तेसाल बयान होगा तो वह मुत्तसिला मुजिबा है, और अगर आदम इत्तेसाल बयान होगा दो निस्बतों में तो वह मुत्तसिला सालिबा है। इसी तरह कजिया शर्तिया मुनफसिला के अंदर दो निस्बतों के दरमियान इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल को बयान किया जाएगा, अगर इन्फिसाल जिक्र हो तो उसको मुनफसिला मुजिबा कहेंगे, और अगर अदम इन्फिसाल जिक्र हो तो उसको मुनफसिला सालिबा कहेंगे। तो बात समझ में आ गई, कजिया हमलिया किसे कहते हैं, शर्तिया मुत्तसिला किसे कहते हैं, और शर्तिया मुनफसिला किसे कहते हैं। तो ये जो कियास इख्तिरानी है ये हमली भी हो सकता है और शर्ती भी। कियास इख्तिरानी हमली हो तो उसमें दोनों मुकदमे कजिया हमलिया होंगे, और अगर ऐसा ना हो दोनों मुकदमे कजिया हमलिया ना हो तो वो कियास शर्ती है। तो कियास शर्ती के अंदर दो सूरतें आ गईं, या तो दोनों मुकदमा शर्तिया होंगे या दोनों में से एक शर्तिया होगा और एक हमलिया होगा, तो वो अब तफसील बयान कर रहे हैं। तो उसमें फिर ये पांच सूरतें यहां बनती हैं। तो अब बात चल रही है शर्ती इख्तिरानी की भाई। शर्ती इख्तिरानी मैंने बतलाया वो कयास है जिसमें हर्फ इख्तिरान जिक्र होता है और दो मुकदमे होंगे और दोनों में से या तो दोनों ही शर्तिया होंगे या एक शर्तिया होगा और एक हमलिया होगा। अगर दोनों शर्तियां हैं तो फिर तीन सूरतें बनती हैं, या तो दोनों शर्तिया मुत्तसिला होंगे या दोनों शर्तिया मुनफसिला होंगे, या एक इनमें से मुत्तसिला होगा और एक मुनफसिला। तो दोनों शर्तिया होने की सूरत में तीन सूरतें बन गईं, और अगर इनमें से एक शर्तिया है और एक हमलिया है तो फिर दो सूरतें बनेंगी, क्योंकि एक तो है हमलिया, दूसरा जो उसके साथ आएगा या वो शर्तिया मुत्तसिला होगा या शर्तिया मुनफसिला। अगर शर्तिया मुत्तसिला है हमलिया के साथ तो ये एक किस्म, और अगर शर्तिया मुनफसिला है किसके साथ, कजियाए हमलिया के साथ, तो ये दूसरी किस्म। तो कुल कितनी सूरतें हो गई, पांच। ये दो मुकदमे हैं कयास के, कयास इख्तिरानी शर्ती है, या दोनों मुकदमे शर्तियां होंगे या एक शर्तिया होगा और एक हमलिया। अगर दोनों शर्तियां हैं तो या दोनों मुत्तसिला होंगे या दोनों मुनफसिला होंगे, या एक मुत्तसिला और एक मुनफसिला, तो तीन ये सूरतें बन गई। और अगर दोनों मुकदमों में से एक हमलिया है तो जो दूसरा मुकदमा है वो या मुत्तसिला होगा या मुनफसिला होगा, तो दो सूरतें यहां बन गई। तो कुल कितनी सूरतें बन गई, पांच सूरतें बन गई। वो ही अब बयान कर रहे हैं, देखिए मतन में कहते हैं फसलुन अशर्तियु मिनल इख्तिरानी, कियास शर्ती इख्तिरानी में से इम्मा अय्यतरक्कब मिन मुत्तसिलतैनी, या तो वो मुरक्कब होगा दो मुत्तसिला से। देखा कियास शर्ती के दोनों मुकदमे क्या होंगे, मुत्तसिला। तो कहते हैं इम्मा अय्यतरक्कब मिन मुत्तसिलतैनी औ मुनफसिलतैनी, या तो वो मुरक्कब होगा दो मुत्तसिला से या वो मुरक्कब होगा दो मुनफसिला से, और हमलियतिन व मुत्तसिलतिन, या एक हमलिया और एक मुत्तसिला से, और हमलियतिन व मुनफसिलतिन, या एक हमलिया और एक मुनफसिला से, और मुत्तसिलतिन व मुनफसिलतिन, या एक उनमें से शर्तिया मुत्तसिला होगा और दूसरा शर्तिया मुनफसिला होगा। ये पांच सूरतें बन गई, देख रहे हैं आप
जी।
या तो दोनों क्या होंगे मुत्तसिला, या दोनों क्या होंगे मुनफसिला, या एक हमलिया और दूसरा मुत्तसिला, तीन सूरतें हो गई, या एक हमलिया और एक मुनफसिला चार सूरतें, और या एक मुत्तसिला और दूसरा मुनफसिला, ये पांच सूरतें बनती हैं। وَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعَةُ, और इसमें चारों शक्लें मुनाकिद होती हैं, इसमें कयास की चारों शक्लें। वो जो अभी जिक्र हुआ था कयास इख्तिरानी हमली के अंदर, शक्ल अव्वल है उसकी शर्त क्या है, ईजाब व फ़िअलियत सुग़रा और कुल्लियत कुबरा। उसके बाद शक्ल सानी आई थी कि दोनों मुकदमे एक दूसरे से कैफियत में मुख्तलिफ हों और कुबरा कुल्लिया होना चाहिए। फिर शक्ल सालिस आई थी कि सुग़रा जो है मुजीबा फ़िअलिया होना चाहिए और इहदल मुकदमतैन कुल्लिया होना चाहिए। फिर शक्ल राबे आई थी कि दोनों मुकदमे मुजीबा हों तो सुग़रा कुल्लिया होना चाहिए, और अगर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो दोनों में से एक को कुल्लिया होना चाहिए। तो वो जो चारों शक्लें कियास हमली के अंदर जारी होती थीं, कियास शर्ती के अंदर भी उसी तरह जारी होती हैं, और जो वहां शर्तें थीं वही यहां पर भी शर्तें हैं। ये माना है وَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعَةُ, और इसके अंदर भी चारों शक्लें मुनाकिद होती हैं। وَفِي تَفْصِيلِهَا طُولٌ, और इनकी तफसील में तवालत है, लंबाई है, यानी इनकी तफसील बड़ी तवील है। इस मुख्तसर रिसाले में उसको बयान नहीं किया जा सकता। माना समझ में आया, कहते हैं وَفِي تَفْصِيلِهَا طُولٌ, और इनकी तफसील में तूल है। वो जो चार शक्लें बनती हैं उनकी तफसील में बड़ी तवालत है। इस मुख्तसर रिसाले में इतनी गुंजाइश नहीं कि उसको बयान किया जाए। मतन समझ में आ गया, अब आइए शरा पर। अब शरा में जो पांच सूरतें बनी उनमें से हर एक की एक एक मिसाल जिक्र करेंगे। कहते हैं कौलुहू मिन मुत्तसिलतैनी का कौलीना, जैसे हमारा यह कौल। अब ऐसा कियास शर्ती इख्तिरानी जिक्र करेंगे, ऐसा कियास शर्ती इख्तिरानी जिक्र करेंगे जो किससे मुरक्कब होगा,
दो
मुत्तसिला से। दोनों मुकदमे शर्तिया मुत्तसिला होंगे। फिर अगले मतन में आएगा औ मुनफसिलतैनी, उसमें दोनों मुकदमे कियास के शर्तिया मुनफसिला होंगे, और फिर आगे हर एक की तरतीब से तफसील करते जाएंगे। तो कहते हैं कौलुहू मिन मुत्तसिलतैनी का कौलीना, जैसे हमारा यह कौल। इन कानति शम्सु तालियातन फन नहारु मौजूदुन, अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है। ये पहला मुकदमा और ये शर्तियां मुत्तसिला है। वकुल्लमा कानन नहारु मौजूदन फल आलमु मुजीउन, और जब भी दिन मौजूद होता है तो जहान जो है वो रोशन होता है। तो जहान तो दुनिया क्या होती है? रोशन होती है। मुजी उनका माना है रोशन, चमकदार। ये दूसरा मुकदमा आ गया और ये भी शर्तिया मुत्तसिला है। युन तीजु, अब ये नतीजा देगा। जी बताइए मुझे कौन सा जुज मुकर्रर है? हां, कानन नहारु मौजूदन। तो वजूद नहार का जिक्र सानी में भी है और अव्वल में भी है, उसको निकाल देंगे और पहले के मुकद्दम को ले लेंगे और दूसरे के ताली को ले लेंगे और नतीजा बनाएंगे। तो कहते हैं युन तीजु कुल्लमा कानति शम्सु तालियातन फल आलमु मुजी उन, सूरज जब भी तुलू होगा तो जहान रोशन होगा। कौलुहु औ मुनफसिलतैनी, मातिन का कौल औ मुनफसिलतैन, यानी वो दोनों मुकदमे क्या होंगे? मुनफसिला होंगे। कौलीना, जैसे हमारा कौल, इम्मा अन यकून अल अददु ज़ौजन व इम्मा अन यकून फर्दन, कि ये आदत जो है या तो ज़ौज है या फर्द है। ये पहला मुकदमा। व, अब ये वाव के साथ अगला मुकदमा जिक्र करने लगे। व इम्मा अन यकून ज़ौजु ज़ौजज़ ज़ौजी औ यकून ज़ौजल फर्दी, और ये ज़ौज जो है या तो ये ज़ौजु ज़ौज है या ये ज़ौजुल फर्द है। ये दूसरा मुकदमा। ज़ौजु ज़ौज किसे कहते हैं और ज़ौजुल फर्द उसे समझ लें। भाई ज़ौज और फर्द तो आप जानते हैं। ज़ौज जुफ्त, भाई वो आदत जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सके, जैसे चार है, इसको तकसीम करें तो दो और दो, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया तो इसके दो हिस्से बन गए। इसी तरह छह है, छह को तकसीम करें तो एक निसफ में भी तीन आएंगे और दूसरे निसफ में भी तीन आएंगे, तो ये देखो तकसीम हो गया। तो जो अदद दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है उसको ज़ौजुन कहते हैं, जुफ्त, और जो अदद दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होता उसको फर्द कहते हैं, यानी ताक। उर्दू में क्या कहते हैं? ताक, जुफ्त और ताक। फिर याद रखो ये जो ज़ौज है ना, जुफ्त, ये दो किस्म पर है। एक ज़ौजु ज़ौज है, एक ज़ौजुल फर्द है। ज़ौजु ज़ौज वो है, वो ज़ौज, वो जुफ्त जिसको तकसीम करें तो दोनों जुज जो हासिल हो, दोनों हिस्से जो हासिल हो वो जुफ्त हो। जैसे चार, चार को तकसीम किया तो दो हिस्से बन गए, हर हिस्से में क्या क्या आया? दो, दो और दो, और दो भी जुफ्त है यानी ज़ौज है, तो दो ज़ौज हिस्से बन गए। और एक है छह, छह ज़ौज है लेकिन आप इसको तकसीम करें तो हर निसफ में कितना आएगा? तीन, 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 और तीन जो हिस्सा आया हर निसफ में, ये ज़ौज है या फर्द है?
फर्द है,
फर्द है। तो चार भी ज़ौज, छह भी ज़ौज, लेकिन फर्क क्या? चार जो है वो ज़ौजु ज़ौज है, ज़ौज का ज़ौज है, इसको तकसीम करें तो आगे भी ज़ौज ही हासिल होते हैं, और जो छह है वो ज़ौजुल फर्द है, उस छह को तकसीम करें तो तीन हासिल होगा, तीन और तीन हासिल होंगे जो फर्द हैं, ताक हैं। भाई फर्क समझ में आया? तो ज़ौज कितनी किस्म पर हो गया? दो किस्म पर, या वो ज़ौजु ज़ौज होगा या ज़ौजुल फर्द होगा। भाई तो कहते हैं वह इम्मा अयकून ज़ौजु, के ज़ौज जो है यानी ज़ौज आदद जो है या तो वो ज़ौज ज़ौजी या तो वो ज़ौजु ज़ौज होगा, अव यकून ज़ौज अल फर्द या वो ज़ौजुल फर्द होगा। अब देखिए पहले मुकदमे में भी आया इम्मा अयकून अल आददु ज़ौजन, या तो आदद क्या होगा? ज़ौज होगा, ज़ौज होगा। और अगले में भी आया व इम्मा अन यकून ज़ौजु, तो ये जो ज़ौज है ये है हद औसत, दोनों में मुकर्रर आया, इसको निकाल देंगे और फिर इस तरह कहेंगे। इधर देखिए अब नतीजा क्या निकालेंगे कि ये अदद या तो फर्द होगा या तो, और आगे कहना था या ज़ौज होगा, वो तो हद औसत था, वो तो गिर गया, तो यूं कहेंगे ये आदत या तो फर्द होगा या ज़ौजु ज़ौज या ज़ौजुल फर्द होगा। अगर ज़ौज है तो उसमें दो ही सूरतें बनती हैं ना, तो ये आदत या तो फर्द है या ज़ौजु ज़ौज या ज़ौजुल फर्द है। भाई तो कहते हैं यून तीजु, तो ये नतीजा देगा इम्मा अयकून अल अददु ज़ौज ज़ौजी औ यकून ज़ौज अल फर्दी औ यकून फर्दन, कि ये आदत या तो ज़ौजु ज़ौज होगा या ज़ौजुल फर्द होगा या फर्द होगा। قوله او حملیت و متصلت. جی اب وہ قیاس ذکر کریں گے جو ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے مرکب ہوگا. نحو کلما کان ھذا الشیء انسانا فهو حیوان وکل حیوان جسم. کلما کان ھذا الشیء انسانا فهو حیوان. جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی. یہ شرطیہ آ گیا مقدمہ اولا, شرطیہ متصلہ. اور وکل حیوان جسم, یہ حملیہ آ گیا بھائی, یہ قضیہ حملیہ ہے, یہ دوسرا جز آ گیا, دوسرا جز آ گیا. اور اب نتیجہ نکالیں گے کون سا جز مقرر ہے. پہلا مقدمہ کیا ہے, کلما کان ھذا الشیء انسانا فهو حیوان, یہ ہے مقدمہ اولا. کل حیوان جسم, یہ ہے مقدمہ ثانیہ. اور اس میں حیوان مقرر ہے, حیوان مقرر ہے, تو اب اس حیوان کی جگہ کیا آ جائے گا, جسم آ جائے گا. دیکھیے بھائی, ینتجو یہ نتیجہ دیتا ہے, کلما کان ھذا الشیء انسانا کان جسما, یہ چیز جب بھی انسان ہوگی, کان جسما تو یہ جسم ہوگی. نتیجہ سمجھ میں آیا. ادھر دیکھیے, انہوں نے کہا اگر یہ چیز انسان ہے تو یہ حیوان ہوگی, تو یہ حیوان ہوگی. اور دوسرا مقدمہ ملایا کہ ہر حیوان کیا ہوتا ہے, جسم ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ چیز انسان ہے تو جسم ہے بھائی. یہ مانا ہے کلما کان ھذا الشیء انسانا کان جسما, جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ جسم ہوگی. ونحو, اور دوسری مثال بھائی, پہلی صورت یہ تھی کہ مقدمہ اولا شرطیہ تھا اور مقدمہ ثانیہ حملیہ تھا. توجہ ہے, مقدمہ اولا کیا تھا, شرطیہ, کلما کان ھذا الشیء انسانا یہ پہلے آیا, اور حملیہ جو تھا کل حیوان جسم وہ بعد میں آیا تھا. اب دوسری صورت بنائیں گے, حملیہ کو پہلے لائیں گے اور شرطیہ متصلہ کو بعد میں لائیں گے. مثلا ھذا انسان, دیکھا یہ ہے حملیہ پہلے لے آئے, اور آگے ہے وکلما کان انسانا کان حیوانا, اور جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی. یہ ہے متصلہ, دوسرا مقدمہ. ینتجو تو یہ نتیجہ دے گا, ھذا حیوان, یہ حیوان. دیکھیے بھائی, یہ انسان ہے یہ چیز انسان, اور جب بھی یہ چیز انسان ہوگی تو یہ حیوان ہوگی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ حیوان ہے بھائی. یہ مانا ہے ینتجو ھذا حیوان قوله او حملیت و منفصلت نحو ھذا عدد. جی اب وہ قیاس ذکر کریں گے, وہ قیاس شرطی جو ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہوگا. کہتے ہیں نحو ھذا عدد, جی یہ حملیہ آ گیا ھذا عدد. اب اگلا منفصلہ ذکر کریں گے, ودائما اما ان یکون العدد زوجا او یکون فردا, اور ہمیشہ ایک عدد یا تو زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے. یہ عدد ہے اور ہمیشہ ایک عدد یا تو زوج ہوتا ہے یا فرد. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ عدد بھی یا تو زوج ھذا ہوگا یا فرد ہوگا. فھذا اما ان یکون زوجا او فردا, تو یہ عدد بھی یا تو زوج ہے یا فرد ہے. قوله او متصلت و منفصلت, اب اس قیاس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جو دو قضیہ شرطیہ سے بنا ہے لیکن ان میں سے ایک متصلہ ہے اور ایک منفصلہ ہے. نحو کلما کان ھذا الشیء ثلاثتا فهو عدد, جب بھی یہ شے تین ہوگی تو یہ عدد ہے. کیا ہے؟ عدد ہے. آگے یہ شرطیہ متصلہ تھا مقدمہ اولا, اب مقدمہ ثانیہ آیا اور وہ منفصلہ ہے. ودائما اما ان یکون العدد زوجا او یکون فردا, اور ہمیشہ کوئی عدد جو ہے وہ زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے. پہلا مقدمہ کیا تھا, اگر یہ چیز تین ہے, ثلاثہ ہے تو یہ عدد ہے, اگر یہ چیز ثلاثہ ہے تو یہ عدد. اور دوسرا مقدمہ ہے جب بھی کوئی چیز عدد ہو تو وہ جفت ہوتی ہے یا طاق. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر یہ شے ثلاثہ ہے تو پھر یا یہ زوج ہوگی یا فرد ہوگی. तो कहते हैं यून तीजो, ये नतीजा देता है कुल्लमा काना हादा शय उसलासतन, कि जब भी ये चीज तीन होगी यानी सलासा होगी, फहुआ इम्मा अय्यकूना जौजन औ फर्दन, तो फिर ये या जौज होगी या फर्द होगी। ऊपर मतन में आया था भाई कि इसमें चार शक्लें बनती हैं, अब उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। कहते हैं कौलहू व यनाकिदू यानी लाबुद फी तिलकल अकसाम मिन इश्तराक अल मुकद्दमतैन फी जुज़इन यकून हुवा अल हद अल औसत, यानी जरूरी है भाई जैसे कियास हमली इक्तिरानी में था, किस में? अभी जो जितनी चार शक्लें हम पढ़कर आ रहे हैं तफसील से वो क्या था? कियास हमली इक्तिरानी था। उस कियास हमली इक्तिरानी के अंदर क्या होता था? दो मुकदमे होते थे, एक के अंदर असगर आता था, एक में अकबर आता था, और दरमियान में एक जुज मुश्तरक होता था, उसको क्या कहते थे? हद औसत। तो यहां भी इसी तरह भाई हद औसत आएगा, क्या आएगा? हद एक जुज मुकर्रर आएगा, हद औसत आएगा, और बाकी अजजा को हम मिलाएंगे तो नतीजा हमें हासिल हो जाएगा। और वह हद औसत आपने जैसे वहां पढ़ा था उसके एतबार से चार शक्लें बनती थी, तो यहां भी कितनी शक्लें बनेंगी? चार शक्लें बनेंगी। तो कहते हैं यानी लाबुद फी तिलकल अक्साम मिन इश्तराकिल मुकद्दमतैनी फी जुज इन, तो जरूरी है इन अकसाम के अंदर के दोनों मुकदमे शरीक हों, फी जुज इन किसी ऐसे जुज में, यकून हुवल हद्दुल औसत जो हद औसत होगा, फइम्मा अन यकूना महकूमन बिही फी किल्तल मुकद्दमतैनी, फिर ये हद औसत है या तो यह महकूम बिही होगा दोनों मुकदमों में, आओ महकूमन अलैहि फीहिमा या दोनों मुकदमों में यह महकूमन अलैह होगा, आओ महकूमन बिही फी सुगरा व महकूमन अलैहि फिल कुबरा या यह सुगरा में महकूमन बिही होगा और कुबरा में महकूमन अलैह होगा, आओ बिल अक्स या इसका बरअक्स होगा। तवज्जो है भाई, जैसे वहां था कियास हमले इक्तिरानी में हद औसत या दोनों जगह मौजू बनता था या दोनों जगह महमूल बनता था या एक में मौजू है दूसरे में महमूल या पहले में महमूल दूसरे में मौजू, चार सूरतें बनती थीं, वही यहां पर भी हैं, वही यहां पर भी हैं। वहां या दोनों जगह हद औसत मौजू होता था या दोनों जगह हद औसत महमूल होता था या एक में मौजू एक में महमूल वगैरह, लेकिन यहां मौजू महमूल नहीं कहेंगे बल्कि यहां चूंकि कजिया बाद सूरतों में कजिया हमलिया आता है और बाद सूरतों में कजिया शर्तिया आता है और कजिया शर्तिया के पहले जुज को तो मुकदम कहते हैं और सानी को ताली, जैसे कजिया हमलिया के पहले जुज को मौजू और दूसरे को महमूल कहते हैं तो शर्तिया के पहले जुज को मुकदम और सानी को ताली कहते हैं, तो यहां पर यह मुकदम और ताली वो भी नहीं कहेंगे, मौजू और महमूल वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती हैं, तो उसको महकूमुन बिही और महकूमुन अलैह के साथ ताबीर करेंगे, महकूमुन बिही और महकूमुन, भाई मौजू क्या होता है? महकूमुन अलैह, और महमूल क्या होता है? महकूम बिही, और मुकद्दम क्या होता है? महकूम अलैह, और ताली क्या होता है? महकूम बिही, तो महकूम बिही के साथ और महकूम अलैह के साथ ताबीर करेंगे उसमें दोनों आ जाएंगे। तो ये माना है फइम्मा अन यकूना महकूमन बिही फी किल्तल मुकद्दमतैनी, या तो हद औसत जो है वो महकूम बिही होगा दोनों मुकद्दमों में, तवज्जो है इबारत पर, दोनों मुकद्दमों में हद औसत महकूम बिही हो। अभी कियास हमली इक्तिरानी जो हम पढ़कर आए हैं, दोनों मुकद्दमों में अगर हद औसत महकूम बिही हो यानी महमूल की जगह आए तो ये कौन सी शक्ल थी? शक्ल सानी, ये क्या थी? शक्ल सानी। और महकूमन अलैहि फीहिमा इबारत पर नजर है, या दोनों में हद औसत महकूमन अलैह होगा, हद औसत दोनों जगह मौजू यानी महकूमन अलैह होता था, ये किस शक्ल में था? ये शक्ल सालिस में, किस में? मालूम हुआ फइम्मा अन यकूना, इबारत पे नजर रखें, फइम्मा अन यकूना महकूमन बिही फी किल्तल मुकद्दमतैनी, इससे कौन सी शक्ल है मुराद है? शक्ल सानी। और महकूमन अलैहि फीहिमा, इससे कौन सी शक्ल मुराद है? शक्ल सालिस। और महकूमन बिही फी सुगरा व महकूमन अलैहि फिल कुबरा, या हद औसत महकूम बिही होगा सुगरा में और महकूम अलैह होगा कुबरा में, यह कौन सी शक्ल है? ये शक्ल अव्वल है, ये क्या है, हद औसत सुगरा में महमूल की जगह आता था यानी महकूम भी ही होता था, और कुबरा में मौजू होता था यानी महकूमुन अलैह, ये शक्ल अव्वल है। औ बिलअक्स, या इसका बरअक्स होगा, और वो किस में होता था, शक्ल राबिया में होता था। तफसील समझ में आ गई। तो इबारत के अंदर इन्होंने सबसे पहले किसको जिक्र कर दिया, शक्ल सानी को, फिर शक्ल सालिस को, फिर शक्ल अव्वल को, और उसके बाद शक्ल राबे को। अब इसी को बयान करेंगे, कहते हैं फल अव्वल हुआ सानी, तो जो अव्वल हमने जिक्र किया वो सानी है यानी शक्ल सानी। ऊपर जो इबारत में जिसको हमने सबसे पहले जिक्र किया कि हद औसत दोनों मुकदमों में महकूमन भी ही हो, ये कौन सी शक्ल है, शक्ल सानी। तो जो अव्वल हमने जिक्र किया हुआ सानी वो शक्ल सानी है। वह सानी हुआ सालिसु, और जो दूसरे नंबर पर हमने जिक्र किया वो क्या है, शक्ल सालिस है। वह सालिसु हुआ अव्वलु, और जो तीसरे नंबर पर हमने जिक्र किया वो शक्ल अव्वल है। वह राबिउ हुआ राबिउ, और जो चौथे नंबर पर हमने जिक्र किया वो शक्ल राबिउ है। इबारत समझ में आ गई। आगे देखिए, कौलुहु वफी तफसीलिहा ऐ फी तफसीलिल अशकालिल अरबाति फी तिलकल अक्सामिल खमसति बिहसबि शराइति वज़ुरूबि वन्नताइजि तूलुन ला यलीकु बिल मुख्तसराति। कहते हैं इन चार शक्लों की तफसील में, फी तिलकल अक्सामिल खमसति, इन पांच किस्मों में, इन पांच किस्मों में, इन चार शक्लों की तफसील के अंदर, बिहसब शराइत शर्तों के एतबार से, व जुरूबी और जरबों के एतबार से, व नताइजी और नतीजों के एतबार से, तूलुन ऐसा तूल है, तूल नकिराया और उसके बाद फेल आ रहा है, उसकी सिफत बनेगा, इनमें ऐसा तूल है यानी इतनी तवालत है, ला यली कुबिल मुख्तसराती, जो मुख्तसर किताबों के, मुख्तसर रिसालों के लायक नहीं, उनको यहां बयान नहीं किया जा सकता। फल युतलब मिन मुतवलातिल मुताखिरीन, बस इसको मुताखिरीन की लंबी किताबों से, बड़ी किताबों से तलब करना चाहिए। जो इनको देखना चाहता है कहां पर तलब कर ले, इनको मुताखिरीन ने जो बंतिक की बड़ी बड़ी किताबें लिखी उनके अंदर तलब करे, वहां उसको पूरी तफसील मिल जाएगी। इबारत समझ में आ गई। फिर एक दफा तर्जमा देख रहे हैं, ऐ फी तफसील इल अशकाल इल अरबाती फी तिलकल अकसाम इल खमसती बि हसब शराइति व ज़ुरूबि व नताइजि तूलुन ला यलीकु बिल मुख्तसराती, और इन पांच किस्मों के अंदर, चारों शक्लों के अंदर जो तफसील है शराइत के एतबार से और जरबों के एतबार से और नतीजों के एतबार से, तूल उन उसमें ऐसी तवालत है, ला यलीकु बिल मुख्तसराती, जो मुख्तसर किताबों के लायक नहीं यानी उनमें बयान नहीं की जा सकती। फल युतलब मिन मुतव्वलातिल मुताखिरीन, पस चाहिए कि इसको तलब किया जाए मुताखिरीन की बड़ी किताबों में से, उनकी लंबी यानी बड़ी किताबों में से। माना समझ में आ गया। अब आइए मतन में, कौलुहु फसलुन अल इस्तिस्नाई युन्तिजु मिनल मुत्तसिलति वज़ुल मुकद्दमी व रफ़ु ताली व मिनल हकीकियति वज़ु कुल्लिन कमानियतिल जम्अ व रफ़ुहु कमानियतिल खुलुवि وقد يختص باسم قياس الخلف وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيزه ومرجعه إلى استثنائي واقتراني। अब قياس استثنائي की बात आई भाई, قياس استثنائي, قياس استثنائي वो قياس है कि जिसके अंदर नतीजा या नकीज़े, नतीजा जो है वो قياس के अंदर ही मजकूर होता है, नतीजा या नकीज़े नतीजा कियास के अंदर ही मजकूर होता है। और यह बात पहले बयान हो चुकी कि कियास इस्तिस्नाई को इस्तिस्नाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर्फ इस्तिस्ना जिक्र होता है, लाकिन्ना या इल्ला वगैरह जो हर्फ इस्तिस्ना है वो इसके अंदर जिक्र होंगे, इसलिए इसको कियास इस्तिस्नाई कहते हैं। और यह मुरक्कब होता है दो कजियों से, याद रखना, दो कजियों से याद रखो, इन दो कजियों में से अव्वल शर्तिया होता है और सानी जो है वो हमलिया होता है। तवज्जो है, कियास इस्तिस्नाई की बात कर रहा हूं, ये दो मुकद्दमों से मुरक्कब होगा, इनमें से पहला मुकद्दमा जो है वो शर्तिया होगा और दूसरा हमलिया होगा, और फिर ये जो शर्तिया है ये मुत्तसिला भी हो सकता है और मुनफसिला भी हो सकता है, मुनफसिला। और मुनफसिला तो आप जानते हैं कि वो हकीकिया भी हो सकता है, मानियातुल जमा भी और मानियातुल खुलूफ भी, मानियातुल खुलूफ भी। तो कियास इस्तिस्नाई मुरकब हुआ दो कजियों से, दो कजियों से। तो पहला कजिया शर्तिया और दूसरा हमलिया, और जो शर्तिया है वो मुत्तसिला भी हो सकता है और मुनफसिला भी। और फिर मुनफसिला जो है उसमें तीन सूरतें बनती हैं, वो हकीकिया भी हो सकता है, मानियातुल जमा भी और मानियातुल खुलूफ भी। तो कुल गोया चार सूरतें यहां बनेंगी। कितनी सूरतें? चार सूरतें बनेंगी। पहला मुकदमा क्या हो? शर्तिया मुत्तसिला हो, और दूसरा कजिया हमलिया। और अगर मुनफसिला हो तो उसमें तीन सूरतें बनती हैं, या वो हकीकिया होगा, या मानियातुल जमा, या मानियातुल खुलूफ। तो तीन सूरतें मुनफसिला में बन गई और एक सूरत मुत्तसिला में बन गई, तो कुल कितनी सूरतें? चार। पहली सूरत क्या के मुकदमा उला क्या हो? शर्तिया मुत्तसिला, और दूसरा क्या हो? हमलिया। तो दूसरा तो हमलिया ही रहेगा, पहले में फर्क पड़ रहा है, और उस इतबार से चार सूरतें बनती हैं। पहला मुकदमा क्या हो? शर्तिया मुत्तसिला, तो एक सूरत। दूसरी सूरत, पहला मुकदमा मुनफसिला हकीकिया हो, दूसरी सूरत। तीसरी सूरत, पहला मुकदमा जो है वह मुनफसिला मानियातुल जमा हो, और चौथी सूरत के पहला मुकदमा मुनफसिला मानियातुल खुलूफ हो। कुल कितनी सूरतें बनती हैं? चार। तो कियास इस्तिस्नाई के अंदर चार सूरतें बनेंगी। और इसमें एक बात याद रखना कि इसके अंदर जो कजिया हमलिया दूसरा आएगा, जो दूसरा मुकदमा आएगा, वो बाहर से नहीं आता, वो इसी कियास के अंदर ही से लिया जाता है, इसी कियास के अंदर ही से लिया जाता है। मसलन मैं कहता हूं, इनकान हादा शैउ इंसानन फहुआ हैवानन वलाकिन न हो इंसान। अगर यह चीज इंसान है तो हैवान होगी, लेकिन यह इंसान है। नतीजा क्या निकला? कि यह हैवान है। तो यह जो दूसरा वलाकिन्ना और हरफ इस्तिस्ना के बाद जो कजिया हमलिया आएगा, वह इसी कियास के अंदर से आएगा। और इसी तरह याद रखो, नतीजा भी इसके अंदर ही मजकूर होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी पहला मुकदमा क्या है? शर्तिया। दूसरा क्या है? हमलिया। ये जो हमलिया आएगा ये कहां से लिया जाएगा? इसी शर्तिया से लेंगे। और याद रखो, नतीजा भी इसी से लेंगे, नतीजा भी इसी। जो पहला मुकदमा शर्तिया है, चाहे मुत्तसिला है, चाहे मुनफसिला हकीकिया है, या मानियातुल जमा है, या मानियातुल खुलूफ, इसी से दूसरा मुकदमा भी लेते हैं और इसी से नतीजा भी लेते हैं। और फिर याद रखना, अगर ये जो पहला मुकदमा है, अगर ये शर्तिया मुत्तसिला हुआ, तो इसको कहेंगे कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल। पहला मुकदमा अगर शर्तिया मुत्तसिला हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल। मुत्तसिला नहीं कहेंगे, मुत्तसिल मुजक्कर कहेंगे, क्योंकि कियास मुजक्कर है, तो सिफत मुत्तसिल भी क्या आएगी? मुजक्कर आएगी। तो कियास इस्तिस्नाई, अगर उसमें पहला मुकदमा शर्तिया मुत्तसिला हो, तो उसको कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल कहते हैं, और अगर पहला मुकदमा मुनफसिला है, तो उसको कियास इस्तिस्नाई मुनफसिल कहते हैं। तो ये दो किस्में हो गई, कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और कियास इस्तिस्नाई मुनफसिल। फिर यह भी याद रखना, इसी कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल, इसको कभी कियास इत्तिसाली भी कह देते हैं, और जिसमें पहला मुकदमा मुनफसिला है उसको कियास इन्फिसाली भी कह देते हैं। तवज्जो है, कियास इत्तिसाली जिसमें कौन सा कजिया होगा? शर्तिया मुत्तसिला। और कियास इन्फिसाली जिसके अंदर कौन सा शर्तिया होगा? कजिया शर्तिया मुनफसिला होगा। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, कहीं पर कियास इत्तिसाली या कियास इन्फिसाली का लफ्ज आ जाए तो आप परेशान हो कि यह कौन सी किस्म है। तो याद रखो, कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और कियास इत्तिसाली एक ही चीज है। कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और कियास इत्तिसाली एक ही चीज है। इसी तरह कियास इस्तिस्नाई मुनफसिल और कियास इन्फिसाली एक ही चीज है। इसी तरह याद रखना, ये आगे, इसी के आगे जो दूसरा मुकदमा है मैंने बताया, ये इसी पहले मुकदमे से लिया जाएगा, इसी शर्तिया से दूसरा कजिया हमलिया मुकदमा लिया जाएगा। याद रखो, ये जो दूसरा मुकदमा है इसका इस्तिस्ना किया जाता है। क्या किया जाता है? और इसी से फिर नतीजे की तरफ भी, नतीजे का भी पता चल जाता है। तो ये जो इस्तिस्ना होता है, इस्तिस्ना, ये कभी ऐन मुकदम का इस्तिस्ना होगा, कभी ऐन ताली का, कभी नकीज मुकदम का, कभी नकीज ताली का। भाई देखिए ना, पहला कजिया कौन सा है? शर्तिया। और कजिया शर्तिया के पहले जो उसको क्या कहते हैं? मुकदम। और दूसरे को क्या कहते हैं? ताली। तवज्जो है। तो उस वो जो कजिया शर्तिया पहला मुकदमा है, उसमें एक मुकदम होगा और एक ताली। तो आगे लाकिन्ना के बाद जो कजिया हमलिया जिक्र होता है उसका इस्तेसना किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्तेसना। तो उसके अंदर कभी ऐन मुकदम को जिक्र करेंगे, कभी ऐन ताली को जिक्र करेंगे, कभी नकीज मुकदम को जिक्र करेंगे, कभी नकीज ताली को। ऐन मुकदम मसलन इनकान हादा शय इंसानन फहुआ हैवान। अगर ये चीज इंसान है तो ये हैवान। मुकदम में क्या जिक्र? इंसान होने का जिक्र है या न होने का? होने का जिक्र है। तो मैं भी आगे कहता हूं लाकिन न हूं इंसान हूं। तो यह है ऐन मुकदम में ले आया। और कभी नकीज मुकदम में ले आऊंगा लाकिन न हूं लैसा भी इंसान ही, लाकिन न हो लैसा भी इंसान ही। मुकदम तो था इंसान होना, और मैं क्या ले आया? इंसान न होना, उसकी नकीज ले आया। इसी तरह कभी इस लाकिन्ना के बाद ऐन ताली को ले आएंगे, इनकान हादा शय इंसान फहुआ हैवान। तो लाकिन्नहु हैवान। देखा वहां हैवान होने का जिक्र, मैं भी क्या ले आया? लाकिन्नहु हैवान। और कभी इसकी नकीज ले आएंगे लाकिन्नहु लैसा भी हैवान। तो ये जिसका इस्तेसना किया जा रहा है, यानी ये जो दूसरा मुकदमा है कजिया हमलिया, ये उसी शर्तिया से लेंगे और उसमें एक मुकदम है और एक ताली। तो यहां पर भी कभी ऐन मुकदम ले आएंगे, यानी जैसा है उसी तरह ले आएंगे, वहां मुजिबा तो यहां भी मुजिबा, वहां सालिबा तो यहां भी सालिबा। तो कभी ऐन मुकदम ले आएंगे, कभी ऐन ताली ले आएंगे, यूं कहें कभी ऐन मुकदम ले आएंगे, कभी नकीजे मुकदम, कभी ऐन ताली ले आएंगे, कभी नकीजे ताली ले आएंगे। भाई बात समझ में आ गई। तो कयास इस्तिस्नाई की कुल कितनी सूरतें बन रही थी? चार चार। तो हर एक में ये चार चार सूरतें आ गई कि इस्तिस्ना या ऐन मुकदम का होगा या नकीजे मुकदम, या ऐन ताली का या नकीजे ताली का। तो चार चार सूरतें हर एक में बन गई। तो कुल कितनी जरबें हो गई? 16 जरबें हो गई, 16 जरबें हो गई। अच्छा भाई, इस कयास इस्तिस्नाई का पहला मुकदमा कजिया शर्तिया होगा, और वो शर्तिया मुत्तसिला भी हो सकता है और मुनफसिला भी हो सकता है। तो उसकी तफसील एक दफा फिर आप अपने जहन में ताजा कर लें। आपने पढ़ा था कि कजिया शर्तिया मुत्तसिला वो है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल या अदम इत्तेसाल को बयान किया जाता है, और कजिया शर्तिया मुनफसिला वो है जिसमें दो निस्बतों के दरमियान इन्फिसाल या अदम इन्फिसाल को जिक्र किया जाता है। और फिर आपने यह भी पढ़ा था कि जो शर्तिया मुत्तसिला है या ये लुजूमिया होगा या इत्तेफाकिया, या ये लुजूमिया होगा या इत्तेफाकिया। लुजूमिया वो है जिसमें मुकदम और ताली के दरमियान लुजूम वाला अलाका हो, कि मुकदम है तो ताली जरूर है, मुकदम है तो ताली जरूर है, तो ये लुजूमिया है। और अगर ऐसा नहीं, मुकदम के साथ ताली लाजिम नहीं, जरूरी नहीं, तो उसको इत्तेफाकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्तेफाकिया। दो चीजें जमा हो गई हैं, मसलन अगर जैद कातिब है तो बकर शायर है, ये इत्तेफाकन ऐसा हो गया, जैद कातिब बन गया और बकर क्या बन गया? शायर बन गया। कि जरूरी है जब भी जैद पाया जाता दुनिया में उसका कातिब होना और बकर का शायर होना जरूरी था? नहीं, ये इत्तेफाकन चीजें जमा हो गई। लेकिन मुकदम और ताली इनमें अगर लुजूम वाला इलाका हो तो उसको मुत्तसिला लुजूमिया कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि लुजूम के इलाके चार हैं, या अव्वल इल्लत हो सानी के लिए, या सानी इल्लत हो अव्वल के लिए, या दोनों मालूल हो एक ही इल्लत के, या दोनों आपस में मुतजायफेन हो। आपको मैंने बताया था इल्लत वो है जिस पर दूसरी चीज का वजूद मौकूफ होता है। इल्लत किसे कहते हैं? एक है इल्लत, एक है सबब। इल्लत पर एक चीज का वजूद मौकूफ होता है। वह इल्लत है तो वो चीज यानी मालूल भी है, इल्लत नहीं तो मालूल भी नहीं। और एक है सबब और मुसबब। सबब भी एक चीज तक पहुंचाता है लेकिन सबब पर उस मुसबब का वजूद मौकूफ नहीं होता। कि सबब पाया जाए तो मुसबब भी जरूर पाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इल्लत जब भी पाई जाएगी मालूल जरूर होगा, क्योंकि इल्लत उसको वजूद देती है। सूरज जब भी निकलेगा दिन जरूर होगा, बल्ब जब भी जलेगा रोशनी जरूर होगी, तो इल्लत जब भी पाई जाए मालूल जरूर पाया जाता है। और दूसरी चीज सबब है, सबब भी एक चीज तक पहुंचाता है लेकिन सबब बिज़ात उसकी जात में मुअस्सिर नहीं होता, लिहाजा सबब के होते हुए मुसब्बब का होना जरूरी नहीं। सबब पहुंचाता जरूर है लेकिन बिज़ात उसके अंदर मुअस्सिर नहीं, जबकि इल्लत बिज़ात उस चीज के अंदर मुअस्सिर होती है। जैसे चाबी का घूमना इल्लत है ताले के खुलने के लिए, चाबी घूमेगी तो ताला जरूर खुलेगा। तो यह है इल्लत और मालूल। तो मैं बयान कर रहा था कि शर्तिया मुत्तसिला के अंदर मुकद्दम और ताली के अंदर अगर लुजूम वाला अलाका हो तो वह शर्तिया मुत्तसिला लुजूमिया कहलाता है, और वह अलाके चार हैं। या मुकद्दम इल्लत होगा किसके लिए? ताली के लिए। जैसे अगर सूरज निकलेगा तो दिन होगा, सूरज का निकलना इल्लत है किसके लिए? दिन के लिए। कभी ताली इल्लत होता है मुकद्दम के लिए, अगर दिन है तो सूरज निकला हुआ है, देखो दिन के लिए दिन है तो सूरज निकला हुआ है और वो सूरज इल्लत है इस मुकद्दम के लिए। और कभी दोनों एक ही इल्लत के मालूल होते हैं, दोनों एक ही इल्लत, एक ही इल्लत की वजह से दो चीजों को वजूद मिल रहा है, तो जब एक चीज मौजूद है तो मालूम है दूसरी भी होगी, क्योंकि इल्लत के साथ दोनों चीजें होती हैं। मसलन मैं कहता हूं अगर दिन है तो जहान रोशन है, तो दिन भी सूरज की वजह से और जहान का रोशन होना भी किसकी वजह से? सूरज। दोनों की इल्लत एक ही चीज है। और कभी दोनों आपस में मुतजाइफेन होते हैं मुकद्दम और ताली, अगर जैद अमर का बाप है तो अमर उसका बेटा है। मुतजाइफेन वो हैं जिनमें से एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ होता है। बाप किसे कहते हैं? जिसका बेटा या बेटी हो। और बेटा बेटी किसे कहते हैं? जिनका कोई बाप हो। भाई मालिक किसे कहते हैं? जिसका कोई ममलूक हो। ममलूक किसे कहते हैं? जिसका कोई मालिक हो। उस्ताद किसे कहते हैं? जिसका कोई शागिर्द। शागिर्द किसे कहते हैं? जिसका कोई उस्ताद। खावंद किसे कहते हैं? जिसकी बीवी हो। और बीवी किसे कहते हैं? जिसका खावंद हो। तो ये देखो ये मुतजाइफेन है, एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ है। तो अगर मुकद्दम और ताली भी इस तरह के हैं तो फिर इनमें लुजूम का इलाका है। अगर जैद अमर का बाप है तो अमर उसका बेटा है। देखा ये दोनों आपस में मुतजाइफेन हैं भाई। तो शर्तिया मुतसिला लुजूमिया भी हो सकता है और इत्तेफाकिया भी। और याद रखो यहां जो कियास के अंदर है सिर्फ लुजूमिया मुतबर है, इत्तेफाकिया मुतबर नहीं। मैं पहले भी बयान कर चुका भाई कि कियास के अंदर शर्तिया मुतसिला लुजूमिया मुतबर है, जहां मुकद्दम और ताली में लुजूम का इलाका हो। मुकद्दम पाया जाए तो ताली जरूर पाया जाए भाई, फिर ही वो मुतबर है। इसी तरह अगर शर्तिया मुनफसिला हो, उसमें आपको मैंने बताया था कि कजिया शर्तिया मुनफसिला के अंदर दो निस्बतों के दरमियान इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल बयान होता है। इन्फिसाल बयान हो तो वो मुजिबा है, और आदम इन्फिसाल बयान हो तो वो सालेबा है भाई। और फिर ये मुनफसिला जो है जिसमें दो निस्बतों में इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल बयान होता है, अगर ये इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल वजूदन भी हो और आदमन भी हो तो वो मुनफसिला हकीकिया है, और अगर ये इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल सिर्फ वजूदन हो तो उसको मानियातुल जमा कहते हैं, और अगर ये इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल सिर्फ आदमन हो तो इसको मानियातुल खुलू कहते हैं। बात समझ में आ गई? मसलन हाजल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन, ये आदद या जौज है या फर्द है। अब देखो जो भी आदद होगा वो इन दोनों में से एक जरूर होगा, या वो जौज होगा या फर्द, यानी वो जुफ्त होगा या ताक होगा। दोनों हो जाए ये नहीं हो सकता, और दोनों ही उठ जाएं ये भी नहीं हो सकता, ना जौज हो और ना फर्द हो ये भी नहीं हो सकता। तो ये मुनफसिला हकीकिया है, दो चीजें हैं, एक उस आदद का जौज होना और एक उस आदद का फर्द होना। ये दोनों जमा भी नहीं हो सकती और उठ भी नहीं सकती। इनमें इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल है, वजूदन भी जब पाई जाए तब भी इन्फिसाल, न पाई जाए तब भी इन्फिसाल, यानी दोनों न पाई जाए ये भी नहीं हो सकता, दोनों इकट्ठी पाई जाए ये भी नहीं हो सकता, और दोनों ही न पाई जाए ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल है, वजूदन भी और आदमन भी। और कभी जो इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल होता है सिर्फ वजूदन होता है और वो मानियातुल जमा है, यानी दोनों इकट्ठे नहीं पाए जा सकती ये दोनों निस्बतें। जैसे हादा शय वो इम्मा हजरुन और शजरुन, ये चीज या तो शजर है या हजर है। अब ये दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती कि एक ही चीज शजर भी हो जाए हजर भी हो जाए, नहीं हो सकता। हां दोनों उठ सकती हैं, एक चीज ना शजर हो ना हजर हो, कोई तीसरी चीज हो, मसलन किताब है या कलम है। अब किताब ना शजर है ना हजर है, तो दोनों शजर और हजर का जमा होना इसमें इन्फिसाल है, इन दोनों के उठने में इन्फिसाल नहीं। तो मानियातुल जमा में इन्फिसाल और आदम में इन्फिसाल सिर्फ वजूदन होता है, आदमान नहीं, यानी दोनों उठ सकते हैं। जबकि मानियातुल खुलूफ के अंदर इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल जो होता है वो सिर्फ उठने के एतबार से होता है, यानी आदम के एतबार से होता है, वजूद के एतबार से नहीं होता, वजूद के एतबार से। जैसे उसकी मिसाल उन्होंने क्या जिक्र की थी कि जैद या तो दरिया में है या डूब नहीं रहा, या तो दरिया में है या डूब नहीं रहा, इन दोनों में से एक चीज जरूर है, या तो वो दरिया में है या डूब नहीं रहा। तवज्जो है, तो इन दोनों से खाली हो ये नहीं हो सकता भाई। ये दोनों चीजें उठ नहीं सकती, दोनों जमा हो सकती हैं, दरिया में भी हो और न डूब रहा हो भाई, तैर रहा हो या किश्ती में बैठा हो, ये दोनों हो जमा हो सकते हैं, लेकिन दोनों उठ नहीं सकते। कि क्या बात की थी मैंने कि जैद या तो दरिया में है या डूब नहीं रहा, ये दोनों उठ नहीं सकती। मसलन दरिया में ना हो और डूब रहा हो, ये नहीं हो सकता। या तो दरिया में है, इसकी नफी ले आओ, दरिया में नहीं है, और आगे था डूब नहीं रहा, उसकी नफी ले आओ, डूब रहा है। दरिया में ना हो डूब रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो अमर दरिया में है या डूब नहीं रहा भाई। तो ये तीन किस्में हो गई कजिया शर्तिया मुनफसिला की। या तो वो क्या होगा, हकीकिया होगा, या मानियातुल जमा होगा, या मानियातुल खुलूब। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि ये जो हकीकिया होता है ये बयक वक्त मानियातुल जमा भी होता है, मानियातुल खुलूब भी, यानी ये दोनों जमा भी नहीं हो सकते और ये दोनों उठ भी नहीं सकते। तो ये मानियातुल जमा और मानियातुल खुलूब दोनों है। और फिर आपने यह भी पढ़ा था कि जो मुनफसिला की तीनों किस्में हैं, या ये इनादिया होंगी या इतफाकिया, या इनादिया यह है कि ये जो दो चीजें जिक्र हुई इनकी जात में ही इनाद और मुखालिफत है, तवज्जो है, इनकी जात में ही मुखालिफत होगी और कभी इतफाकन मुखालिफत आई होगी। तो इतफाकिया ये मोतबर नहीं, बल्कि इसमें से कौन सा मोतबर है, इनादिया मोतबर है। ये तीनों मिसालें जो आपने की ये इनादिया की थी भाई, कि इनकी जात ही में मुखालिफत हो। तो कियास के अंदर ये मुनफसिला की जो तीन किस्में हैं, हकीकिया, मानियातुल जमा और मानियातुल खुलूब, ये तीनों आएंगी, लेकिन तीनों इनादिया होने चाहिए, इतफाकिया नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई, तफसील अच्छी तरह समझ में आ गई। और यहां एक और कीमती बात याद रखिए भाई, ये जो कियास इस्तिस्नाई है इसमें जो पहला मुकदमा शर्तिया है इसको कुबरा कहते हैं, और जो दूसरा मुकदमा है कजिया हमलिया जिसका इस्तिस्ना किया जा रहा है उसको सुगरा कहते हैं। कियास इक्तिरानी में तो सुगरा पहले आता है और कुबरा बाद में, लेकिन कियास इस्तिस्नाई के अंदर जो पहला मुकदमा है यह है कुबरा, और जो दूसरा कजिया हमलिया है छोटा मुकदमा वो उसको सुगरा कहते हैं। तो गोया कियास इस्तिस्नाई में कुबरा पहले आता है और सुगरा बाद में आता है। बात समझ में आ गई, कियास इस्तिस्नाई में पहला मुकदमा जो शर्तिया है वो कुबरा है और जो दूसरा हमलिया है वो सुगरा है भाई, सुगरा है। अच्छा भाई, आगे एक नक्शा अपनी कापियों पर बना लीजिए भाई, इंशाल्लाह ये नक्शा जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर सारी इबारत हल हो जाएगी भाई, सारी इबारत। ऊपर लिखिए भाई, ये पूरे सफे पर नक्शा बनेगा भाई, पूरे सफे पर सबसे ऊपर लिखिए नक्शा कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और मुनफसिल, ये उन्वान है। नक्शा कियास इस्तिस्नाई, नक्शा कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और मुनफसिल, नक्शा कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और मुनफसिल, लिख लिया। अब यूं कीजिए भाई, ऊपर से नीचे तक पांच लकीरें आपने खींचनी है, पांच लकीरें, हमें छह खाने चाहिए। तवज्जो है, पूरे सफे पे चौड़ाई में हमें छह खाने चाहिए, लेकिन जो चौथे नंबर पर खाना होगा वो चौड़ा होना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ लकीरें खींचें, छह खाने चाहिए हमें, छह खाने, लेकिन चौथा खाना जो है वो थोड़ा सा बाकियों की बनिस्बत थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ खत खींचिए, छह खाने बना लें सफे की चौड़ाई में, बाकी खाने बराबर हों, लेकिन चौथे नंबर पर खाना जो आए वो जरा सा चौड़ा होना चाहिए बाकियों की बनिस्बत। जी जल्दी जल्दी बनाइए भाई। ऊपर से नीचे की तरफ पांच लकीरें खींचेंगे तो छह खाने बन जाएंगे। बना लिया जी। अब सबसे ऊपर लिखिए, पहली सतर में पहले खाने में सबसे ऊपर लिखिए भाई मुकद्दमाए उला, मुकद्दमाए उला जो पहला खाना है दाएं तरफ, उसमें सबसे ऊपर लिख लें मुकद्दमाए उला, ये उनवानात हैं। दूसरे खाने में लिखिए मुकद्दमाए सानिया, मुकद्दमाए सानिया। तीसरे में लिखिए नतीजा, नतीजा। चौथे खाने में लिखिए जो बड़ा खाना है इसके ऊपर लिखिए मिसाल मुकद्दमाए उला, मिसाल मुकद्दमाए उला, यानी मुकद्दमाए उला की मिसाल। पांचवें खाने के ऊपर उनवान दीजिए मिसाल मुकद्दमाए सानिया, मिसाल मुकद्दमाए सानिया, यानी मुकद्दमाए सानिया की मिसाल यहां आएगी भाई। और आखिरी में लिखें मिसाल नतीजा, मिसाल नतीजा। लिख लिया। अब ये जो आपने उनवानात दिए इस सारे के नीचे एक लकीर खींच लीजिए शुरू से आखिर तक पूरे सफे पर भाई, ताकि नीचे अब हम जो कुछ लिखेंगे ये उनवानात उससे जुदा हो जाएं। ये जो आपने मुकद्दमाए उला से लेकर आखिर तक मिसाल नतीजा है, इस सारे के नीचे एक लकीर खींच दें, ये सारे उनवानात बन गए भाई। अब आगे ये मुकद्दमाए उला के अंदर सबसे ऊपर पहली सतर में लिखिए शर्तिया मुत्तसिला, शर्तिया मुत्तसिला, शर्तिया मुत्तसिला। लिख लिया। इसको नंबर दीजिए एक भाई, इसके शुरू में एक का नंबर भी लगा दें एक, इससे निचली सतर में नंबर लगाएं दो, इससे निचली सतर में तीन, इसी तरह सोलह तक नंबर नीचे लगाते चले जाएं भाई, एक से लेकर सोलह तक नंबर लगाते चले जाएं। जी नंबर लगा लिए, नंबर लगा लिए भाई, 16 नंबर लगाने हैं एक से लेकर 16 तक। एक नंबर पर क्या लिखा, शर्तिया मुत्तसिला। अब यूं कीजिए पांच नंबर पर लिखिए मुनफसिला हकीकिया, यह मुकदमा उला के खाने की बात कर रहा हूं, इसी में पांचवीं सतर पर लिखिए मुनफसिला हकीकिया, मुनफसिला हकीकिया। और इसी में नौवीं सतर पर लिखिए मुनफसिला मानियातुल जमा, यही मुकद्दमाए उला के खाने के अंदर नौवीं सतर में लिखिए मुनफसिला मानियातुल जमा। तेरह नंबर में मुनफसिला मानियातुल खुलू लिखिए, तेरह नंबर सतर है मुकद्दमाए उला वाले खाने में, तेरह नंबर सतर में तेरह नंबर के साथ लिखिए मुनफसिला मानियातुल खुलू भाई, मुनफसिला मानियातुल खुलुव। तो यह मुकद्दमाए उला वाले खाने में एक नंबर के सामने आपने लिखा शर्तिया मुत्तसिला, पांच नंबर के सामने लिखा मुनफसिला हकीकिया, नौ नंबर के सामने लिखा मुनफसिला मानियातुल जमा, और तेरह नंबर के सामने लिखा मुनफसिला मानियातुल खुलुव। तो देखो यह मुकद्दमाए उला ये चार सूरतें बनती हैं, या ये शर्तिया मुत्तसिला होगा या ये मुनफसिला हकीकिया होगा या ये मुनफसिला मानेअतुल जमा होगा या ये मुनफसिला मानेअतुल खुलू होगा। और फिर हर एक के अंदर आगे जो मुकदमा सानिया आएगा उसमें चार चार सूरतें बनेंगी भाई, तो कुल 16 जरबें बन जाएंगी। तो अब दूसरे खाने में आइए, मुकदमा सानिया का जो खाना है इसमें पहली सतर में जो एक नंबर वाली है उसमें लिखिए आयने मुकदम, आयने मुकदम। दूसरी सतर में लिखिए इसी मुकदमा सानिया वाले खाने में आयने ताली, आयने ताली। तीन नंबर सतर में इसी मुकदमा सानिया वाले खाने में लिखिए नकीज मुकदम, नकीज मुकदम। और चार नंबर सतर में लिखिए इसी खाने में नकीज ताली, नकीज ताली। तो ये चार सूरतें बन गई शर्तियां मुत्तसिला के साथ, एक से लेकर चार तक के मुकदमा उला क्या होगा, शर्तिया मुत्तसिला। आगे जो हर्फ इस्तिस्ना के बाद जो मुकदमा सानिया यानी कजिया हमलिया जिक्र होगा उसमें कभी तो ऐने मुकदम जिक्र होगा, कभी ऐने ताली, कभी नकीजे मुकदम और कभी नकीजे ताली। ये चार सूरतें बन गई शर्तिया मुत्तसिला के अंदर। यही चार सूरतें बनेंगी मुनफसिला हकीकिया में भी भाई। तो पांच नंबर सतर में मुनफसिला हकीकिया जहां आपने लिखा है इससे अगले खाने में मुकदमा सानिया के अंदर भी यही इसी तरतीब से चारों लिख लें भाई। पांच नंबर में ऐन मुकदम लिखें भाई, ये मुकदमा सानिया वाले खाने की बात कर रहा हूं भाई। पांच नंबर सतर में यहां क्या लिखिए, ऐन मुकदम, उससे नीचे लिखिए ऐन ताली, उससे नीचे लिखिए नकीज मुकदम और उससे नीचे लिखिए नकीज ताली। ऐन मुकदम, ऐन ताली, नकीज मुकदम, नकीज ताली। तो ये आठ नंबर सतर तक बात हो गई। ये चार सूरतें किसमें आ गईं, मुनफसिला हकीकिया। यानी अगर मुकदमा उला मुनफसिला हकीकिया हो तो जो दूसरा मुकदमा आएगा वो ऐन मुकदम भी हो सकता है, ऐन ताली भी हो सकता है, नकीज मुकदम भी हो सकता है और नकीज ताली भी हो सकता है। अब आइए नौवीं सतर में, नौवीं सतर में आपने पहले खाने में लिखा था मुनफसिला मानेअतुल जमा, इसके सामने ये जो दूसरा खाना है मुकदमा सानिया वाला इसमें इसी तरह फिर वही चारों लिख लें ऊपर से नीचे की तरफ। नौवीं सतर में लिखें ऐन मुकदम, दसवीं में ऐन ताली, ग्यारहवीं में नकीज मुकदम और बारहवीं में नकीज ताली। ऐन मुकदम, ऐन ताली, नकीज मुकदम और नकीज ताली, ये चार सूरतें मुनफसिला मानेअतुल जमा में भी बन गईं। उससे आगे तेरह नंबर सतर में आइए, इसमें आपने पहले खाने में लिखा था मुनफसिला मानेअतुल खुलूव, दूसरे खाने में यानी मुकदमा सानिया वाले खाने में फिर इसी तरह वही चारों सूरतें लिख दें भाई। तेरह नंबर सतर में आएगा ऐन मुकदम, चौदह नंबर सतर में आएगा ऐन ताली, पंद्रह नंबर सतर में आएगा नकीज मुकदम और 16 नंबर में आएगा नकीजे ताली। तो पहला कजिया जो है वो मुनफसिला मानेअतुल खुलूफ हो और दूसरा मुकदमा वो या ऐन मुकदम होगा या ऐन ताली या नकीज मुकदम या नकीज ताली, इसमें भी चार सूरतें बन गईं। तो कुल कितनी जरबें हो गईं, 16 जरबें हो गईं। अब इसमें से कुछ नतीजा देंगी और कुछ नतीजा नहीं देंगी, कुछ मुंतिज हैं कुछ अकीम हैं यानी नतीजा नहीं देती। कौन कौन सी नतीजा देती हैं, या ये जो एक नंबर आपने लिखा था मुकदमा उला क्या है, शर्तिया मुत्तसिला, और मुकदमा सानिया क्या है, ऐन मुकदम। तो यहां अब नतीजे वाले खाने में लिखिए ऐन ताली, जो तीसरा खाना है नतीजा उसमें लिखिए ऐन ताली। तो ये पहली जर्ब नतीजा देती है, इससे नीचे दूसरी और तीसरी जर्ब नतीजा नहीं देती भाई। तो लिहाजा इस नतीजे वाले खाने में दूसरी और तीसरी सतर में क्रॉस का निशान लगा दें, छोटा सा वो कांटे का निशान लगा दें, यानी इसका नतीजा नहीं आता। चौथी जर्ब में आइए, मुकदमा उला क्या है? शर्तिया मुतसिला, और मुकदमा सानिया क्या है? नकीज ताली। याद रखो इसका नतीजा नकीज मुकदम आएगा, इसका नतीजा नकीज मुकदम आएगा। अब उससे नीचे आइए, पांच नंबर सतर में नतीजे वाले खाने में लिखिए नकीज ताली, नकीज ताली। छह नंबर सतर में नतीजे वाले, छह नंबर सतर में नतीजे वाले खाने में लिखिए नकीज मुकदम। सात नंबर में लिखिए ऐन ताली। आठ नंबर में लिखिए ऐन मुकदम। ये नतीजे वाले खाने की तफसील बयान कर रहा हूं। पांच नंबर में, पांच नंबर सतर में नकीज ताली, उससे नीचे नकीज मुकदम, उससे नीचे ऐन ताली, उसके नीचे ऐन मुकदम। नौवीं सतर में आइए, अगर पहला मुकदमा मुनफसिला मानेअतुल जमा हो और मुकदमा सानिया ऐन मुकदम हो तो याद रखो इसका नतीजा नकीज ताली आता है। तो नतीजे वाले खाने में नौ नंबर सतर में लिख लीजिए नकीज ताली, नकीज ताली। इसे नीचे इसी खाने में दस नंबर के सामने लिखिए नकीज मुकदम, नकीज मुकदम। तो ये नतीजे वाले खाने में नौ नंबर में क्या लिखा? नकीज ताली, और दस में नकीज मुकदम। आगे 11, 12, 13, 14 इन जरबों के नतीजे नहीं आते। तो 11, 12, 13, 14 इन सत्रों के अंदर नतीजे वाले खाने में क्रॉस के निशान लगा दें, कांटे के निशान लगा दें, ताकि पता चले कि इनका नतीजा नहीं आता। 15 नंबर सत्र में आइए भाई, 15 नंबर, इसमें मुकदमा सानिया है नकीज मुकदम भाई, और नतीजे वाले खाने में नतीजा लिखिए ऐन ताली, ऐन ताली, ऐन ताली। और 16 नंबर में, 16 नंबर नतीजे वाले खाने में लिखिए ऐन मुकदम। नतीजे वाले खाने की बात कर रहा हूं, 15 नंबर सतर में क्या लिखा? ऐन ताली, और 16 में ऐन मुकदम, ऐन मुकदम। ये तफसील है भाई 16 जरबें जो कियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल और मुनफसिल की, और इनमें से कुछ मुंतिज हैं और कुछ मुंतिज नहीं। कितनी का नतीजा नहीं आता? 6 हैं, 6 जरबें हैं जिनका नतीजा नहीं आता, और 10 जरबें हैं जिनका नतीजा आता है। अब आगे मिसाल मुकदमा उला और मिसाल मुकदमा सानिया और मिसाल नतीजा, इसके अंदर हम इनकी मिसालें कर लेंगे भाई, मिसालें कर लेंगे। मुकदमा उला की मिसाल लिखिए भाई पहली सतर में एक नंबर के सामने, मिसाल मुकदमा उला पहली सतर में लिखिए इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन। और ये एक से लेकर चार तक, चारों में यही मिसाल है मुकदमा उला की, इनकानते शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, यही मिसाल मुकदमा उला की चारों जरबों में आएगी। तो एक सतर में आपने ये मिसाल लिख ली, बाकी के नीचे वो ऐजन की अलामत लगा दें, दो बराबर छोटी छोटी दो लकीरें टेढ़ी कर, जिसका माना यह है कि ऊपर जो है नीचे भी वही है। एक में तो आपने मिसाल लिखी, बाकी तीनों में ऐजन की अलामतें लगाएं, ये सारे शर्तिया मुत्तसिला। अब इनके साथ मुकदमा सानिया क्या था? एक नंबर में ऐन मुकदम, एक में क्या था? ऐन मुकदम। लिहाजा अब मिसाल मुकदमा सानिया वाले खाने में आइए, ये जो आपने मिसाल लिखी इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, इसमें, इसमें मुकदम क्या है? अश्शम्सु तालियातुन, यही मिसाल बन जाएगी किसकी? मुकदमा सानिया की। मुकदमा सानिया क्या था? पीछे देखें दूसरे खाने में ऐन मुकदम, तो इसी ऐन मुकदम को हमने यहां मिसाल वाले खाने में भी लिखना है, मिसाल मुकदमा सानिया, इसके अंदर एक नंबर सतर में लिखिए वही मुकदम, लाकिन्ना के साथ लिख दें, लाकिन्ना शम्सा तालियातुन, लाकिन्ना शम्सा तालियातुन। अब मुझे बताइए, इधर देखिए, इनकानत शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, लाकिन्ना शम्सु तालियातुन, लेकिन सूरज तो मौजूद है, नतीजा क्या निकला? फन्नहारो मौजूदुन, देखा वो ऐन ताली नतीजा आ गया। हमने भी पीछे नतीजे वाले खाने में क्या लिखा था? ऐन ताली, तो यहां भी नतीजा ऐन ताली आएगा। तो यहां मिसाल नतीजा वाले खाने में लिख दीजिए फन्नहारो मौजूदुन, ये एक नंबर सतर में, ये एक नंबर सतर में। तरीका समझ में आया? पूरा कयास क्या बना? इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन लाकिन न शम्स तालियातुन, नतीजा क्या आया? फन्नहारो मौजूदुन। दूसरी और तीसरी जर्ब, हां ये दूसरी और तीसरी जर्ब, इसका तो नतीजा ही नहीं आता, बात समझ में आ गई? दूसरी तीसरी जर्ब का नतीजा ही नहीं आता। चौथी जर्ब, चौथी जर्ब में मुकदमा सानिया क्या लिखा था हमने? पीछे देखें दूसरे खाने में नकीज ताली, और ताली क्या है यहां पर? अन्नहारो मौजूदुन, इसकी नकीज ले आए, अन्नहारो लैस भी मौजूदुन। तो लिखिए भाई, ये मिसाल मुकदमा सानिया वाले खाने में चार नंबर के सामने लाकिन न नहार लैस भी मौजूदुन, लाकिन न नहार लैस भी मौजूदुन, और इसका नतीजा क्या आएगा भाई? देखो पीछे चार नंबर में नतीजा क्या था? नकीज मुकदम, मुकदम क्या है? शम्सु तालियातुन, तो उसकी नकीज निकाल लें, अशम्सु लैसत बितालियातिन। तो ये मिसाल नतीजा वाले खाने में चार नंबर के सामने सतर में लिखिए फशम्सु लैसत बितालियातिन, फशम्सु लैसत बितालियातिन। तो कियास क्या बना? इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन लाकिन न नहार लैस भी मौजूदिन, नतीजा क्या निकला? फशम्सु लैसत बितालियातिन, ये नतीजा आ गया। तरीका समझ में आया? अब देखिए जरा इस कियास पर गौर कीजिए, कियास क्या बना? इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, लाकिन नहार लैस भी मौजूदिन, लेकिन दिन तो मौजूद नहीं, नतीजा क्या निकला? के सूरज भी मौजूद नहीं है भाई, नतीजा समझ में आ रहा है? और आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि जो मुकदमा सानिया है वो भी इसी मुकदमा उला से लिया जाता है, और जो नतीजा है वो भी इसी मुकदमा उला से लेते हैं, तवज्जो है, वो भी इसी से लेते हैं। तो यहां देखो, ये चार नंबर में मुकदमा सानिया क्या लिया? नकीज ताली, ताली की नकीज ली, और नतीजा क्या आया? नकीज मुकदम, नतीजा आया भाई। अब आइए पांच नंबर में भाई, पांच नंबर में मुकदमा उला है मुनफसिला हकीकिया, मुकदमा सानिया है ऐन मुकदम, और नतीजा है नकीज ताली। अब इसके आगे मिसाल लिखिए भाई, मिसाल मुकदमा उला के खाने में पांच नंबर के सामने हाजल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, हाजल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, और मिसाल मुकदमा सानिया में लिखिए लाकिन नहु ज़ौजुन, लाकिन नहु ज़ौजुन, और मिसाल नतीजा में लिखिए फहुआ लैस बिफर्दिन, फहुआ लैस बिफर्दिन। देखो हाजल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, ये मुनफसिला हकीकिया है, और इसमें मुकदमा सानिया हम किसको लाए, किसका इस्तिस्ना किया? पांच नंबर में देखिए मुकदमा सानिया क्या जिक्र है? ऐन मुकदम, उस ऐन मुकदम को हम लाए, और हमने क्या कहा? लाकिन नहु ज़ौजुन, लाकिन नहु, ये ऐन मुकदम है। तो नतीजा क्या आया? नकीज़े ताली, फहुवा लैस बिफर्दिन। आप खुद गौर कर लीजिए, इधर देखिए, मैं कहता हूं यह आदद या तो जौज है या फर्द है, लेकिन यह जौज है, नतीजा क्या निकला, यह फर्द नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यह जो मिसाल आपने लिखी मुकदमा उला की, हाजल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन, ये पांचवीं से लेकर आठवीं जर्ब तक सब में यही मिसाल है, लिहाजा इसके नीचे तीन सतरें जो हैं उनमें ऐजन की अलामत डाल दें कि यहां भी वही मिसाल है भाई। अब मिसाल मुकदमाए सानिया वाले खाने में आइए। मुकदमाए उला क्या है, हाजल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन, छह नंबर में भाई, छह नंबर में। और यहां मिसाल मुकदमाए सानिया में लिखिए छह नंबर के सामने, लाकिन नहु फर्दुन, लाकिन नहु फर्दुन। इधर देखिए, मैं आपसे कहता हूं यह आदद या तो जौज है या फर्द है, लेकिन यह फर्द है, नतीजा क्या निकला, मालूम हो यह जौज नहीं, यही नतीजा है भाई। नतीजे वाले खाने में लिखिए फहुअलैसा बिज़ौजिन, फहुअलैसा बिज़ौजिन। सात नंबर सतर में मिसाल मुकदमा सानिया के खाने में लिखिए लाकिन नहु लैसा बिज़ौजिन, सात नंबर सतर है भाई, लाकिन नहु लैसा बिज़ौजिन। और आठ नंबर में लिखिए लाकिन नहु लैसा बिफर्दिन, इसी खाने में आठ नंबर के सामने लिखिए लाकिन नहु लैसा बिफर्दिन, लिख लिया। अब देखिए ये सात नंबर जरा देखें, लाकिन नहु लैसा बिज़ौजिन, देखिए कियास क्या बना, हाज़ल अददु इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन लाकिन नहु लैसा बिज़ौजिन, यह आदत या तो जौज है या फर्द है, लेकिन यह जौज नहीं है, नतीजा क्या निकला, तो यह फर्द है, तो यह नतीजा लिखिए फहुआ फर्दुन। सात नंबर के सामने मिसाल नतीजा के अंदर फहुआ फर्दुन। तो कयास पूरा क्या बना, फिर देखिए हाजल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन लाकिन नहु लैसा बिज़ौजिन, तो नतीजा आया फहुआ फर्दुन। आठ नंबर में देखिए, इधर देखिए आठ नंबर में कियास क्या है, यह आदत या तो जौज है या फर्द है, लेकिन यह फर्द नहीं है, नतीजा क्या निकला, तो यह जौज है, तो आठ नंबर में नतीजे में लिखिए फहुआ जौजुन, फहुआ जौजुन। पूरा कियास क्या बना, हाजल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन लाकिन नहु लैसा बिफर्दिन, नतीजा क्या आया फहुआ जौजुन। ये आठ नंबर जर्ब बयान हो रही है। जो मुकदमा उला है वो मुनफसिला हकीकिया है, और मुकदमा सानिया जो है वो नकीज़े ताली है, और नतीजा जो है वो आयने मुकदम है भाई। अब आइए नौ नंबर जर्ब में भाई, नौ नंबर जर्ब में मिसाल मुकदमा उला के खाने में लिखिए हादश शय इम्मा शजरुन औ हजरुन, हादश शय इम्मा शजरुन औ हजरुन, हादश शय इम्मा शजरुन औ हजरुन। और मिसाल मुकदमा सानिया के खाने में लिखिए लाकिन नहु शजरुन, लाकिन नहु शजरुन। इधर देखिए, मैं आपसे कहता हूं यह चीज या तो शजर है या हजर है, लेकिन यह शजर है, नतीजा क्या निकला, कि यह हजर नहीं है, तो नतीजा लिखिए फहुआ लैसा बिहजरिन, फहुआ लैसा बिहजरिन। नौ नंबर जर्ब क्या बन गई, हादा शय इम्मा शजरुन औ हजरुन लाकिन नहु शजरुन, नतीजा आया फहुआ लैसा बी हजरिन। दस नंबर जर्ब में आइए और मिसाल मुकदमा उला के अंदर लिखिए, हां इसमें भी वही ऊपर वाली मिसाल आएगी, ऐजन की अलामत डाल दें या दोबारा लिखना हो दोबारा लिख लें, हादा शय इम्मा शजरुन औ हजरुन। और आगे मुकदमा सानिया की मिसाल वाले खाने में लिखिए लाकिन नहु हजरुन, लाकिन नहु हजरुन। और नतीजे वाले खाने में लिखिए फहुआ लैसा बिशजरिन, फहुआ लैसा बिशजरिन। क्या कयास बना भाई, दसवीं जर्ब की बात हो रही है, शुरू से देखिए, दसवीं जर्ब में मुकद्दमा उला है मुनफसिला मानियातुल जमा, और मुकद्दमा सानिया है ऐन ताली, और नतीजा क्या आएगा? नकीज मुकद्दम। और फिर उसकी मिसाल भी हमने कर ली, हाद शय ओ इम्मा शजरुन औ हजरुन, और मुकद्दमा सानिया की मिसाल लाकिन नहु हजरुन, और नतीजा क्या आया? फहु लैस बी शजरिन। अगली चार जरबों का नतीजा नहीं आता, लिहाजा पंद्रहवीं जरब पर आइए। पंद्रहवीं जरब जिसमें मुकद्दमा उला है मुनफसिला मानियातुल खुलूफ, और मुकद्दमा सानिया है नकीज मुकद्दम, और नतीजा जो आएगा वह ऐन ताली आएगा। इसकी मिसाल लिखिए भाई, मिसाल मुकद्दमा उला के खाने में, मिसाल मुकद्दमा उला के खाने में, हाद अश्शय उ इम्मा ला शजरुन औ ला हजरुन, हाद अश्शय उ इम्मा ला शजरुन औ ला हजरुन, हाद अश्शय उ इम्मा ला शजरुन औ ला हजरुन, और मिसाल मुकद्दमा सानिया के खाने में लिखिए भाई, पंद्रह नंबर सत्र में, लाकिन नहु लैस बिला शजरिन, लाकिन नहु लैस बिला शजरिन। नतीजा लिखिए, फहुआ ला हजरुन, फहुआ ला हजरुन। मैं कहता हूं आपसे यह चीज या तो ला शजर है या ला हजर है, और फिर कहता हूं लेकिन यह ला शजर नहीं है, तो मालूम हुआ क्या है? ला हजर है, यही नतीजा है। फहुआ ला हजरुन, फहुआ ला हजरुन। सोलह नंबर जर्ब में आइए भाई, इसमें भी मुकद्दमा उला की जो मिसाल है वही होगी, हाद अश्शय उ इम्मा ला शजरुन औ ला हजरुन, और मिसाल मुकद्दमा सानिया के खाने में लिखिए, लाकिन नहु लैस बिला हजरिन, लाकिन नहु लैस बिला हजरिन। ये सोलह नंबर सत्र में मिसाल मुकद्दमा सानिया के खाने में, लाकिन नहु लैस बिला हजरिन, नतीजा है फहुआ ला शजरुन, फहुआ ला शजरुन। इधर देखिए कियास क्या बना, इधर देखिए ये शे या तो ला शजर है या ला हजर है, लेकिन ये ला हजर नहीं है, नतीजा क्या निकला? मालूम हुआ ये ला शजर है, यही नतीजा आया भाई जी। नक्शा मुकम्मल हुआ भाई, बात समझ में आ गई। ये सोलह जरबें बनी, इनमें से दस नतीजा देती हैं और छह नतीजा नहीं देती, और हमने सब की मिसालें भी कर ली भाई, मिसालें। और इसमें, और इसमें आप गौर कीजिए, जो मुनफसिला मानियातुल जमा है, मुनफसिला, इसमें सिर्फ दो जरबें नतीजा दे रही हैं। कौन सी दो जरबें? जिनमें मुकद्दमा सानिया क्या है? ऐन मुकद्दम या ऐन ताली है। दूसरे खाने पे देखिए, नौ और दस ये नतीजा दे रही हैं। मुकद्दमा उला क्या है? मुनफसिला मानियातुल जमा, और मुकद्दमा सानिया क्या है? ऐन मुकद्दम या ऐन ताली, ये दो नतीजा दे रही हैं। अब नीचे आइए पंद्रह और सोलह में, यहां पर देखिए मुकद्दमा उला मुनफसिला मानियातुल खुलू है, और इसमें मुकद्दमा सानिया क्या है जो नतीजा दे रहा है? पंद्रह और सोलह में नकीज मुकद्दम और नकीज ताली। तो मालूम हुआ मानियातुल जमा में वो दो जरबें नतीजा दे रही हैं जहां किसका इस्तिस्ना है? ऐन मुकद्दम का। तवज्जो है, नौ और दस में दूसरे खाने में देखिए ऐन मुकद्दम और ऐन ताली, और पंद्रह और सोलह में दूसरे खाने में देखिए नकीज मुकद्दम और नकीज ताली। मालूम हुआ, इधर देखिए, जब पहला मुकद्दमा मुनफसिला मानियातुल जमा हो, मानियातुल जमा, तो इसकी वो दो जरबें नतीजा देंगी जिनमें ऐन मुकद्दम या ऐन ताली का इस्तिस्ना होगा जी। और मानियातुल खुलूफ के अंदर वो जरबें नतीजा देंगी जिसमें नकीज मुकद्दम या नकीज ताली का इस्तिस्ना होगा। तवज्जो है, मानियातुल जमा में ऐन मुकद्दम और ऐन ताली का इस्तेसना हो तो नतीजा आएगा, और मानियातुल खुलू में नकीज मुकद्दम और नकीज ताली का इस्तेसना हो तो नतीजा आएगा। और मैंने आपको बताया था जो हकीकिया होता है वो मानियातुल जमा भी होता है और मानियातुल खुलू, तो उसमें ऐन मुकद्दम और ऐन ताली ये दो सूरतें भी नतीजा देंगी, और नकीज मुकद्दम और नकीज ताली ये दोनों भी नतीजा देंगी। इसीलिए आप देखें कि जो पांच से लेकर आठ तक मुनफसिला हकीकिया है उसमें ऐन मुकद्दम और ऐन ताली वाली सूरत भी नतीजा दे रही है और नकीज मुकद्दम और नकीज ताली वाली सूरत भी नतीजा दे रही है, क्योंकि जो मुनफसिला हकीकिया है ये मानियातुल जमा भी है और मानियातुल खुलूफ भी है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। तो ये तफसील थी कियासे इस्तेसनाई की और उसकी 16 जरबें सारी आपने लिख ली। इंशाल्लाह अब अगले सबक में हम जो इबारत हल करेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी, अच्छे तरीके से हल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।